ایسا درہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، تو جس کے دل میں خوف خدا ہے ایسا انسان کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ تو جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کو اسے ڈراتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر شے سے ڈراتا ہے۔ تب دیکھیے، ایک اسلامک حکومت ہے، ایک اسلامک نظام ہے، ایک اسلامک سسٹم ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کو چلانے والا ولی فقیہ حاکم اعلیٰ ہے تو اس کی اعلیٰ ترین پہلی صفت ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایمان اتنا زیادہ ہے، تو اگر آپ دنیا کا آج کے دور میں جائزہ لیں تو حکومت اسلامی کے نام پہ کئی حکومتیں ہیں، لیکن صحیح اور جس کو کہا جائے کہ حقیقی عنوان سے یا صحیح طور پر تمام قوانین اسلامی کو نافذ کرنے کی کوشش اگر کی جا رہی ہے، یا تمام طور پر عدل و انصاف کے ساتھ جس اسلامی ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے جمہوریہ اسلامی ایران۔ کھلی باتیں سب جانتے ہیں تو کیوں ہے کیوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی اسلامک ممالک ہیں، آپ 54 یا 53 اسلامک ممالک ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سپر پاور، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی سپر پاور ہو، اس سپر پاور کو کسی بھی اسلامی ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ مثلا کسی سپر پاور حکومت کو مثلا سعودی عرب سے خطرہ ہے، یا جو دوسرا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یا دبئی ہے، جو بھی اسلامک ملک کے عنوان سے اسلامک ممالک ہے، کبھی آپ نے کسی کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہوگا سپر پاور طاقت کا کہ فلاں حکومت سے فلاں حکومت کو خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں، آرام سے سب ہے۔ لیکن واحد ایک اسلامک ملک ہے کہ جس کے نام سے اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں خطرہ ہے، وہ ہے جمہوری اسلامی ایران۔ کہ آج بھی اس کے نام سے جن نے اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والی حکومتیں جس سے ڈرتی ہیں، جس کا خوف ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی بنیادی تقوی اور ایمان پہ رکھی گئی ہے، اور ایمان کی حدیث کی روشنی میں تقوی اور ایمان کی بنیاد اور فاؤنڈیشن جس چیز پر رکھی جائے تو پروردگار ایسے انسان سے ہر ایک کو ڈراتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ تو یہ فطری بات ہے کہ اسلامی حکومت سے ڈرنا، اور بالخصوص جمہوریہ اسلامی ایران سے ڈرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ اس کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن ایمان اور تقویٰ پہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے، آپ اس کو مکس نہ کریں، آپ اس بات کو تسلیم کیجیے، عقل ہے، عقل سلیم سے فیصلہ کریں کہ 100% نہ صحیح، 100% نہ صحیح۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو کچھ اسلامک ایران یعنی جمہوری اسلامی ایران میں ہو رہا ہے، یعنی 100% وہاں عدالت ہو رہی ہے، نہیں دیکھیے، اور یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100% اور 100% عدالت اور اسلامک حکومت جاری ہوگی تو وہ ہوگی جب آپ کے ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ ایران، تنہا ایک طرف جنگ ہوئی، 8 سال تک جنگ ہوئی، तो जिसका ईमान बुलंद होता है तो क्या अजीब गरीब दुनिया। इमाम खुमैनी ने इरशाद फरमाया, अवाम को मुखातब करके कहा कि तुम लोग इस जंग से ये ना समझो कि ये तुम्हारे लिए तकलीफ का मौका है, बल्कि इमाम ने कहा, इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जंग तुम्हारे लिए आई है, ये तुम्हारे लिए एक नेमत बनकर आई है, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक नेमत है। और यकीनन आप देखिए कि इन्होंने ईमान और तकवी की बुनियाद पर इतने तमाम सेंसर और इतने तमाम इकोनॉमिक जो इनके ऊपर सेंसर लगे ईरान के ऊपर, इन्होंने इतने सेंसर और तहरीमात के बावजूद भी कितना इल्मी मैदान में काम आगे बढ़ाया है, आपको बेहतर जानते हैं। ठीक है, नतीजा सिर्फ किसका? अल्लाह पर ईमान और तकवी का। तो अगर पहली शर्त एक हुकूमत इस्लामी को चलाने के लिए ईमान और तकवे की शर्त है, तब आइए दूसरी शर्त की जो एक हाकिम शरअ के लिए फकीर जानो शराय के लिए जो कुरान ने बयान की है, दूसरी शर्त है इल्म। पहली शर्त तकवा और ईमान, दूसरी शर्त है इल्म। दूसरी शर्त है इल्म। जब तक इल्म नहीं होता निजाम है हुकूमत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्या आप बेहतर जानते हैं। कुरान की रोशनी में इल्म की बरतरी और उसका बुलंद मकाम नेहायत वाज़ह है। सादा सा मिसाल, सादी सी बात है, रोजमर्रा की बात है, आपसे अगर ये सवाल किया जाए एक आलिम एक जाहिल दोनों बराबर है या नहीं, आप लोग फैसला करेंगे कि यकीनन आलिम का मकाम जाहिल से आला और अरफा है। लिहाजा इसी चीज को परवरदिगार ने कुरान में ये बहुत वाज़ह है कि परवरदिगार ने इल्म के मकाम इल्म की मंजिलत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल यस्तवी अल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या वो लोग के जो जानते हैं जो साहिबान इल्म है, क्या साहिबान इल्म जाहिलों के बराबर हो सकते हैं, क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। सुनाचे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 इरशाद हुआ। अब आप देखें जब आप कुरान का मुताला करें, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो अगर परवरदिगार आलम ने जब भी किसी को कोई मनसब इनायत करना चाहा, जब भी किसी को कोई मनसब इनायत करना चाहा, तो सबसे पहले जिस सिफत को परवरदिगार आलम ने बयान की है किसी मनसब को देने के लिए और खासकर खलीफा बनाने और हुकूमत के सिलसिले में जो सिफत बयान की है, वो सबसे पहली सिफत इल्म की सिफत बयान की है। चुनांचे आप जनाब आदम के हिस्से में पढ़ते हैं वाकये में कि जनाब आदम का पुतला बनाया गया, इम्तिहान फरिश्तों ने मलाइका ने इतराज़ किया, तो परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअल्लम आदम अस्मा, अल्लाह ताला ने आदम को अस्मा की यानी चंद नामों की तालीम दी। खलीफा बनाने से पहले क्या किया? इल्म अता किया। उसके बाद सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उन्हीं अस्मा को मलाइका के सामने पेश किया कि बताओ ये किनके नाम है, तो मलाइका जवाब देने से कासिर रहे, तो फिर परवरदिगार आलम ने कहा कि जो हम जानते हो तुम नहीं जानते। तो आदम को फजीलत दी गई, इम्तिहान जो लिया गया वो इल्म के जरिए से, जिसका इल्म ज्यादा और अरफा ज्यादा था परवरदिगार ने मनसब को उसे अदा किया। उसके बाद आइए और एक इसी तरह का मिलता जुलता वाकया कि हमने कहा कि जो इंसान आलिम है पढ़ा लिखा है साहिब इल्म है, अगर हुकूमत वली फकीह या दीगर जो भी खलीफा या मनसब जो भी अता किया जाएगा उसको उसकी इल्म के बुनियाद पर अता किया जाएगा, माल और दौलत की बुनियाद पर अता नहीं किया जाएगा, जिस्म और जिस्मानियत की बुनियाद पर अता नहीं किया जाएगा। इनाम क्या बनी इसराइल का दौर है, बनी इसराइल का ये उस जमाने का दस्तूर था कि वो जब अपना खलीफा या बादशाह किसी को बनाना चाहते थे, उनका ये दस्तूर रहा कि वो क्या करते, जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हुआ करती थी, जिसके पास जाओ हशम हुआ करता था, जिसके पास लश्कर हो, जिसके पास इम्कानात बहुत ज्यादा हो, ऐसे इंसान को अपना लीडर चुनते थे। यानी उनकी नजर में एक लीडरशिप के लायक वही इंसान था कि जिसके पास दौलत ज्यादा है, जिसके पास माल है, कुदरत है, और खुदा वाला कहे जाओ हशम बहुत ज्यादा है, चाहे इल्म हो ना हो, तकवा हो ना हो, ईमान हो ना हो, उससे कोई उनको सरोकार नहीं था। ये बनी इसराइल का नजरिया था। तो चुनांचे ये नजरिया कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। कुरान ने कहा क्या? अगर किसी को हाकिम आला मानना है, किसी को अपना रहबर और लीडर मानना है, तो उसके लिए आप ये ना देखो कि उसके पास दौलत जिसको जिस्मानियत है या नहीं है, जाओ हशम है या नहीं है, बल्कि ये देखो ईमान है या नहीं है, तक्वा है या नहीं है, इल्म है या नहीं है। चुनांचे बनी इसराइल के नबी जनाब शुएल ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तालूत को उनके ऊपर उनका हाकिम बनाया। तालूत एक सीधे साधे आदमी, यानी जाहिरी तौर पर ना उनके पास माल था, ना दौलत थी, ना जाओ हशम था, ना लश्कर था, एक मामूली गुरबत ज़दा इंसान थे जनाबे तालूत। जनाबे शमूएल ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जनाबे तालूत को बनी इसराइल का हाकिम बना दिया, हुक्मरान बना दिया। तो हमने कहा कि बनी इसराइल का कॉन्सेप्ट सोच ये थी कि जिसके पास दौलत हो वही हमारा हाकिम बन सकता है। तो एक मरतबा एतराज किया, भला वो तालूत के जिसके पास ना माल है, ना दौलत है, ना जाह है, ना हशम है, ना लश्कर है, कुछ भी नहीं है, ऐसे को तुमने हमारा हाकिम क्यों बनाया? तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ादहु बस्तन फिल इल्म वल जिस्म। यकीनन तालूत के पास जाहिरी एतबार से माल दौलत नहीं है, जाओ हशम नहीं है, लश्कर कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़ादहु बस्तन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ताला ने तालूत को तुमसे ज्यादा इल्म इनायत किया है। चुनांचे आयत का तर्जुमा मुलाहिज़ा हो कि नबी ने, यानी जनाब शमूएल ने परवरदिगार आलम की तरफ से अपने कौम को यह जवाब दिया, कहा कि खुदा ने उसे तुम पर फजीलत दी है, इसको तालूत को तुम पर फजीलत दी है, क्योंकि बनी इसराइल ने इतराज किया था ना, एक फकीर इंसान को हमारा हाकिम बना दिया। तो नबी ने ये जवाब दिया, अगरचे जाहिरी तौर पर फकीर है, लेकिन अल्लाह के नजदीक किसी का हाकिम होने के लिए माल और दौलत मेयार नहीं है, बल्कि क्या है? कहा कि खुदा ने उसे तुम पर फजीलत दी है, और माल में ना सही, अगरचे वो खाली हाथ है, उसके पास माल और दौलत नहीं है, मगर इल्म और जिस्म का फैलाव तो उसी का खुदा ने ज्यादा फरमाया है, यानी अल्लाह ताला ने उसको इल्म भी दिया है और उसको कवी जुस्सा बनाया है, यानी उसके जिस्म को भी मजबूत बनाया है। तो अब मालूम हुआ, इन दो आयतों का जब खुलासा निचोड़िए देखेंगे तो मालूम ये हुआ कि अगर अल्लाह कोई मनसब किसी को इनायत करना चाहता है, हाकिम बनाना चाहता है, कि हाकिम आला है, जो भी मनसब किसी का हुक्मरान बनाना चाहता है, तो अल्लाह के नजदीक अगर मेयार है तो वो है इल्म। तो लिहाजा आज के दौर में कोई ये निजाम बदला नहीं है, निजाम वही निजाम है, कानून वही कानून है। तो आज के दौर में भी जब हम अपना किसी को हाकिम आला माने, वली माने, या अपना लीडर माने, तो अपने से इंसान गौर फिक्र करके फैसला करें कि अपना लीडर किसको माने। आया ऐसे इंसान को माने कि जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमीलात में मशगूल और मसरूफ है, उसको अपने नफ्स और अपने अहलोयाल और अपने अलावा किसी और की, ना मुसलमानों की, ना उम्मत मुस्लिमा की फिक्र है, और ना ही उसके पास कुछ इल्म है। या ऐसे इंसान को माने कि जो कभी अपने बारे में कुछ सोचे ही ना, बल्कि जो भी कुछ सोचे वो उम्मत मुस्लिमा के मफाद में, मुसलमानों के मफाद में सोचे, और इल्मी एतबार से हम सबसे आला और अफजल है। अल्लाह ताला ने हर एक को अक्ल दी है, अक्ल से इंसान सोचे और गौर फिक्र करे। तो आइए हर उस चीज के बारे में, अब इल्म कौन सा है हुकूमत को चलाने के लिए, हर वो इल्म कि जो एक सिस्टम, एक निज़ाम और इस्लामी निफाज और इस्लामी अहकाम के निफाज के लिए, इस्लामी अहकाम को जारी करने के लिए जिस इल्म का भी लाजिम होना जरूरी है, हर उस चीज के बारे में इल्म होना जरूरी है जिसका ताल्लुक कानून, कानून इस्लामी के निफाज करने से हो, ठीक है। और इस शर्त यानी इल्म के साथ साथ उसके अंदर कुदरत शुजात का होना भी जरूरी है, ताकि दुश्मनान दीन और दुश्मनान इस्लाम और किसी के तारो तशनी और उनके खौफ और हिरास की परवाह किए बगैर वो अपने फरीजे की अंजाम देने में मसरूफ रहे। दो चीजों का आना जरूरी है, इल्म भी हो, और वो इल्म सिर्फ मखसूस इल्म दीन नहीं है, जो हाकिम हम जिसको मान रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इल्म दीन, इल्म फिक्र में महारत रखता हूं, नहीं, बल्कि इस्लामिक निज़ाम और इस्लामिक सिस्टम को चलाने के लिए जिस इल्म की भी जरूरत हो वो तमाम इल्म उस फकीह के पास, उस हाकिम के पास मौजूद हो। दूसरी चीज क्या है, इल्म के साथ साथ कुदरत और शुजात भी हो। बसा औकात ऐसा होता है कि इंसान के पास इल्म है लेकिन कुदरत और शुजात नहीं है, तो ऐसा इंसान भी जिसके पास इल्म तो है लेकिन कुदरत और शुजात नहीं है, ऐसा भी इंसान रहबरी के लायक नहीं है बल्कि रहबरी और लीडरशिप के लायक वही इंसान है कि जिसके पास इल्म के साथ साथ शुजात और कुदरत भी है। शुजात और कुदरत का होना इसलिए जरूरी है ताकि अगर कल दुश्मनान दीन दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कोई कदम उठाए तो ऐसा हाकिम जामे शरायत उसके मुकाबले में अपने कुदरत और शुजात का मुजाहरा करते हुए उससे डटकर मुकाबला कर सके। ऐसा ना हो कि इल्म है लेकिन शुजात और कुदरत ना होने की बिना पर वो दुश्मनान दीन के वारिद होने वाले हमलों को उसका जवाब ना दे सके। इसलिए कुदरत इल्म के साथ साथ कुदरत और शुजात का होना भी जरूरी है। और चूंकि इल्म के बारे में बहुत वाज़े है कि इल्म होना बहुत जरूरी है लाजिम है बदियात या कुल से है हर एक जानते अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे एक सिस्टम पे चलाने के लिए इल्म का होना जरूरी है तो बच्चा भी यही जवाब देगा कि बेशक जरूरी है। लिहाजा बहुत वाज़े बात है इसके ऊपर हम और ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे सिर्फ दो नुकतों पर गुफ्तगू करके दो नुकते बयान करके इस गुफ्तगू को तमाम करते हैं। और वो ये पहला नुकता यह कि इस्लामी जो हम जिसको अपना हाकिम आला मान रहे हैं जिसको अपना लीडर मान रहे हैं उसके अंदर कम अज कम या और ईमान तकवा के हिसाब से शर्त है उसके साथ साथ पहली चीज का ये होना जरूरी है कि इस्लामी कवानीन का इल्म जितने भी कवानीन जितने भी रूल्स ऑफ इस्लाम है उन तमाम चाहे अपने इस्लामी कवानीन से जब हम नाम इस्लाम का आता है हमारे साथ मुश्किल क्या है जब हम नाम इस्लाम का सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नमाज रोजा हज उम्र ज़कात इसी से ये हमारा इस्लाम दीन इसी में महदूद है। इस्लामी कवानीन से मुराद सिर्फ नमाज रोजा हज उम्र ज़कात नहीं है इस्लामी कवानीन से मुराद हर वो काम चाहे इंसान के दीन से मुताल्लिक हो चाहे इंसान के दीन से उसका ताल्लुक हो और राबिता हो अब दीन से ताल्लुक नमाज रोजा कौम्स वगैरह या उसकी दुनिया से मुताल्लिक हो यानी सियासी एतबार से हो पॉलिटी के एतबार से हो या उसकी सकाफत यानी उसके कल्चर से मुताल्लिक हो या उसके इज्तिमा सोसाइटी के मुताल्लिक हो ये तमाम कवानीन तमाम चीज़ों को इस्लाम ने बयान किया है। इस्लाम सिर्फ नाम नहीं है नमाज रोजा पढ़ने का बल्कि इस्लाम एक अजीम तरीन दीन और अजीम तरीन निज़ाम और सिस्टम का नाम है कि जिसमें दीन के साथ साथ इंसान की सियासत पॉलिटिकल इंसान के सकाफती यानी उसके कल्चर और इसी के साथ साथ उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ें उसके लिए लाजिम और ज़रूरी हैं उन तमाम चीज़ों को बयान करने का नाम है इस्लाम। तो अब जो हाकिम आला है जो फ़ख़्रे जामे शरायत है उसके लिए लाजिम है ज़रूरी है कि तमाम इस्लामी कवानीन का इल्म हो जहाँ इल्म फिक उसके लिए ज़रूरी है इल्म फिक के साथ साथ उसके लिए पॉलिटिक का इल्म भी ज़रूरी है कि एक इस्लाम की सियासत को किस तरह से माशरे में आम किया जाए एक हाकिम आला के लिए जहाँ फिक और हदीस का इल्म ज़रूरी है उसी के साथ साथ उसके लिए सकाफती इल्म भी उसके लिए ज़रूरी है कि इस्लामिक कल्चर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए किस तरह से डेवलप किया जाए ताकि इस्लामिक कल्चर पर मग़रिब का कल्चर हावी ना आ सके ये चीज़ें ज़रूरी जब तक हाकिम आला इसके बारे में गौर फिक्र नहीं करेगा यकीनन अगर ये सिर्फ दीन से मखसूस हो जाए तो हमारे कल्चर का क्या होगा हमारी सियासत का क्या होगा हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी का क्या होगा आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लिहाजा एक हाकिम आला के लिए एक फ़क़ीह जामे शरायत के लिए जहाँ फिक्र हदीस का भी ज़रूरी है उसी के साथ साथ उसे तमाम सियासी उतार चढ़ाव का भी जानना ज़रूरी है उसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम के तमाम रुमूज और औकात से वाकिफ होना भी उसके लिए ज़रूरी है इसके अलावा तमाम कल्चरल जो हमारे समाज को मगरिब के कल्चर से दूर कर सके उन तमाम चीज़ों का उसके लिए जानना ज़रूरी है। इसका मतलब है इस्लामी कवानीन इस्लामी कवानीन से आप ये ना सोच लें कि सिर्फ फिक और हदीस का इल्म उसके पास हो नहीं फिक और हदीस का तो लाजिम है उसी के साथ साथ पॉलिटिकल और इज्तिमाई यानी सोसाइटी के लिए और इसी के साथ साथ कल्चरल और वगैरह ये तमाम इल्म का हासिल होना ये तमाम चीज़ों का जानना एक हाकिम आला के लिए ज़रूरी और लाजिम है। दूसरी चीज़ हर दौर के तकाजों के मुताबिक इल्मी दस्तरस हासिल करना ये बहुत अहम मसला है। आप 1400 साल पहले का दीन और 1400 साल पहले का ज़माना तस्वुर कीजिए और आज के ज़माने का तस्वुर कीजिए क्या दोनों ज़माने एक जैसे हैं क्या दोनों ज़माने एक जैसे हैं नहीं जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है हालात बदल شرع کے لیے اور حاکم اعلیٰ اور ولی فقیہ جامع شرائط کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات ایک طرف۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے، یعنی یہ اپنی بات ہے، انسان اس پہ غور فکر کرتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے باصلاحیت افراد کی اطاعت لازم نہ ہو تو کیا غیر صالح افراد کی پیروی جائز ہوگی؟ دیکھیے دو ہیں، ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس نہ ایمان ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ انسان اپنی لیڈرشپ کے لیے کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے با ایمان متقی انسان کو چھوڑ کر ایک ایسے انسان کی پیروی کریں کہ جس کے پاس نہ ایمان ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ صلاحیت ہے؟ ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات، اگر ہم یہ چیز مان لیں کہ حکومت کو چلانے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ صرف جا کر مسجد میں نماز پڑھائیں اور اپنے گھر کا راستہ دیکھیں۔ جیسے کہ مثال مشہور ہے، ملا کی موت، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ نظر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اگر صدر اسلام میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ دین اور سیاست کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح اسلامی حکومت ہو تو وہی دین ہے اور دینی سیاست ہے۔ اگر اسلامک سیاست ہو تو اسلامک سیاست ہی دین ہے اور دین ہی سیاست کا نام ہے۔ تب آپ دور رسول میں دیکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں آپس میں جنگ کو جھگڑا نہیں ہوتا تھا، مسلمان مسلمان میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا تو کیا اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے لوگ کورٹ میں جاتے تھے؟ اس وقت کہ اس زمانے میں کورٹ موجود تھی، رسول اللہ کے پاس آتے تھے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے کہاں تھے؟ رسول اللہ کے پاس۔ اگر دشمنوں میں جنگ ہوتی، اسلام اور اسلام مخالفین میں جنگ ہوتی، تو خود رسول اللہ فیصلہ تھے۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے ہوتی؟ تمام چیزوں کا مرکز اور سینٹر کیا تھا؟ مسجد تھی۔ تو معلوم ہو کہ مسجد ہی سے تمام مسلمانوں کے امور کو یا تمام مسلمانوں کے سسٹم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کو صرف آپ نماز پڑھنے کی جگہ پر منحصر نہیں کر سکتے، بلکہ تمام اسلامک نظام اور سسٹم کو اسی مسجد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں بھی ہمیں تعزیہ ائمہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آج کے دور میں کیوں کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں؟ اس لیے بعض مراجع کے نزدیک کورٹ کچہری کے جانے کو جائز نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے کہ الاسلام یعلو ولا یولا علی، اسلام خود بلند ہے، اسلام کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، اسلام سب کے اوپر حاوی ہے۔ اگر آج ہم اپنے مسائل کو، اپنے آپسی اختلافات کو اگر مراجع کرام کے زیر سایہ حل کریں یہ بہتر ہے، یا اپنے معاملات کو کورٹ میں حل کریں یہ بہتر ہے۔ اگر کورٹ میں حل کرتے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اسلام پر دوسرے کو فوقیت دی ہے۔ یہ ہوا نا کہ ہم نے اپنے مسئلے میں اسلام کے مسئلے، کیونکہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں مسلمان ہیں، فیصلہ کون کر رہا ہے؟ کافر۔ تو لہذا بہتر ہمارے لیے نہیں کہ ہم اپنے آپ کے اختلافات کو، آپسی معاملات کو، جہاں امام جمعہ ہے کیونکہ یہ بھی ان کی طرف سے ہے، یا ولی فقیہ ہے، مجتہد ہے، نائب امام ہے، مجتہد ہے، فقہا ہے، ان تمام کی روشنی میں، ان تمام کی کمک اور مدد سے ان مسائل کو ہم حل کریں۔ تو اگر اسلام، اگر ہم یہ مان لیں کہ اسلام اس بات کی اگر اجازت دیتا ہے کہ آپ با علم، با صلاحیت، با کردار، با ایمان کی اتباع اور اطاعت نہ کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو بھی فاسق و فاجر حکومت پر آ جائے، جو بھی ظالم حکومت پر آ جائے، آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ ہرگز اسلام اس بات کو اجازت نہیں دیتا۔ تو جب ہمارے پاس ایسا با کردار، اخلاق، کردار موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی پیروی اور اطاعت کریں؟ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے۔ تو الغرض، اگر ضرورت ہے تو کیا اس کا حاکم اعلیٰ ایک نافذ شخص ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو چلانے والا ایسا شخص ہو کہ جو ہر اعتبار سے اعلیٰ ہو، ارفع ہو۔ اس لیے کامل اور لائق ترین شخص وہ ہے، اب خلاصہ یہ کہ کامل اور لائق ترین شخص वो है जो इल्म और अमल दोनों एतबार से मुआशरे के तमाम अफराद से नुमाया मकाम पर हासिल हो, जो नुमाया मकाम पर फायज हो, हर एतबार से, इल्म एतबार से, अमल एतबार से, तकवा के एतबार से, ईमान के एतबार से, हम लोगों से एक अलग मकाम पर फायज हो। इस इंसान की हमको पैरवी और इतबा करनी है। और यही शख्स दूसरे लफ्जों में इसी इंसान को के जो हर एतबार से आला व अरफा है, इसी इंसान को शरीयत की इस्तेलाह में कहा जाता है फकीह जानो शराए। जब हमारे पास एक फकीह जानो शराए मौजूद है तो हम अपने लीडरशिप के लिए इसी फकीह जानो शराए की पैरवी करें। अब ये बात आप याद रखिए कि हमारी बहस इसमें है कि हमारे नजदीक पर्टिकुलर शख्सियत के बारे में हम बहस नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फकीह जानो शराए जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, उसको हमें मानना है। आज के दौर में जो है प्रेजेंट उसको हम माने, अब इनके बाद जो भी आता है इन तमाम शरायत और कंडीशंस पे उतरता है उसका मानना हमारे लिए जरूरी और लाजिम है। कोई इंसान ये ना कहे कि खाली आप क्योंकि आज के दौर में विलायत फकीह मुनासिर है और रहबर मुअज्जम इंकलाब आयतुल्लाह खामेनेई में तो हम इन्हीं के बारे में बहस करें, नहीं, बल्कि जात अलग है और ये इस्तेलाह एक अलग चीज है। इस्तेलाह के वली फकीह फकीह जानो शराए वली फकीह आज के दौर में ये है, खुदा इनके हयात में, इनके उम्र में और इजाफा करे, इनके सारे अमल सब याद रखे। अगर क्योंकि कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा तक नहीं, परवरदिगार इंशाअल्लाह तूल हयात दे रहबर इंकलाब इस्लामी को। अगर खुदा ना खास्ता एक मौका ऐसा आता है कि रहबर का साया हमारे सर से उठ जाता है तो क्या विलायत फकीह यही खत्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। क्योंकि बाद लोगों को देखिए, इस्लाम तंग नजरिए का नाम नहीं है बल्कि ब्रॉड माइंड का नाम है। इंसान को खुले दिल से, खुले दिमाग से सोचना है। बाद लोगों को सिर्फ आयतुल्लाह खामेनेई से नफरत है, इस बिना पर वो लोग पूरी विलायत फकीह का इनकार कर देते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि क्योंकि उनकी शख्सियत, क्योंकि बाद लोग ये कहते हैं मुझे आयतुल्लाह खामेनेई पसंद नहीं है लिहाजा मैं उनको नहीं मानता, जब उनको नहीं मानता तो विलायत फकीह को नहीं मानता। ये बात अलग है, किसी की अपनी जाती दुश्मनी के बिना पर उसके मनसब से इनकार करना ये अक्ल इस बात की इजाजत नहीं देती। आज के दौर में वली फकीह अपनी जगह पर है, कल को अगर उनकी जगह कोई और आता है और इन शरायत पर उतरता है तो यकीनन उनकी विलायत को मानना भी हमारे लिए वाजिब है, जिस तरह से आज के दौर में आयतुल्लाह खामेनेई की रहबरी को मानना वाजिब है, कल उनके बाद जो इस मनसब पर फायज होता है उसी तरह उसकी विलायत को भी मानना हमारे लिए वाजिब और जरूरी है। तो हमारा मसला शख्सियत में नहीं है बल्कि मनसब के बारे में हम बहस कर रहे हैं। ये विलायत फकीह, और ये भी जान लेंगे कि विलायत फकीह कोई एक आदमी को फिक्स नहीं करता बल्कि एक कमेटी है जिसका नाम है मजलिस खुबरागान में कि जो 90 अफराद पर मुश्तमिल है, वो जाकर इस इंसान को इस मनसब पर किसी को सिलेक्ट करती है। हम जैसे आम इंसान इसको सिलेक्ट नहीं करते, ये अलग मसला है क्योंकि बात आगे तो हमने इंशाल्लाह फिर कभी इसके बारे में मुफसल गुफ्तगू होगी। तो ऐसा इंसान की जो हर एतबार से लायक है, अरफा है, आला है, इल्म, तक्वा, ईमान, इसको फकीह इस्तेलाह में, इस्लाम की इस्तेलाह में कहते हैं फकीह जानो शराए। तो आप खुलासे के तौर पर हाकिम इस्लामी की उमूमी शरायत ये हुई है कि पहली चीज अदालत, हाकिम जानो शराए आदिल, हम जिसको अपना लीडर मान रहे हैं, जिसको हाकिम मान रहे हैं, उसका आदिल होना जरूरी है। चुनांचे आकर हमारे साथ इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहि सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज दुनिया उनका नाम इज्जत ले रहे हैं, उनके नाम पर फख्र कर रही है। और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने नफ्स को बेच दिया है दूसरों के हाथों, वो खुद भी जलील है, उनकी कौम भी जलील है। यानी जाहिर सी बात है। तो ये इमाम की हदीस है, इमाम ने कहा कि जो इंसान अपने आप को आदिल रहबर और लीडर के इख्तियार में दे देगा, यकीनन उसकी जिंदगी इज्जत की जिंदगी गुजरेगी। इसलिए तो मौला ने कहा था कि आज तुम मेरी हुकूमत का तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हें तुम्हारे ऊपर खुदा एक ऐसे जालिम को मुअय्यन करेगा कि फिर तुम्हें याद आएगा कि अली का दौर कैसा दौर था। चुनांचे जब हज्जाज आया तो हज्जाज ने यह साबित कर दिया कि यकीनन अली ने जो कहा था बिल्कुल सही था। हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा साकीफा कूफे का वाली, हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम बादशाह कूफे ने कभी नहीं देखा, इतना जालिम था। उस वक्त लोगों को अली की बात याद आई कि यकीनन अली ने सही कहा था, अली आदिल थे, बल्कि तमाम अदल का नाम है अली। जब अली तमाम अदल की रहबरी को लोगों ने ठुकरा दिया तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हज्जाज इब्न यूसुफ जाकर हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया। तो आज के दौर में भी अगर हम कोई भी इंसान रहबर आदिल को छोड़कर किसी दूसरे को अपना रहबर और लीडर इख्तियार करें तो यकीनन वो अपने आप को जिल्लत में और अपने आप को गुमराही के रास्ते पर ले जा रहा है। तो अदालत पहली शर्त है। दूसरी और तीसरी शर्त है कुदरत और इल्म। चुनांचे मौला कहरा अमीरुल मोमिनीन अली ने अभी तालिब इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, बेशक वही शख्स इस अमर खिलाफत और हुकूमत का मुस्तहक है जो सबसे ज्यादा कुदरत और इल्म का हामिल है। और इमाम ने भी एक फार्मूला दिया है हमारे लिए कि जो भी हाकिम आला है, जो भी जिसके भी इख्तियार में हुकूमत है, जिसके भी इख्तियार में ये अमर खिलाफत है, उसके लिए इल्म और कुदरत का होना जरूरी और लाजिम है। अब कुल बहस का खुलासा दो जुमले में आपकी खिदमत में याद करता चलूं कि वली फकीह जानो शराइत मुश्तहिद और आयत इज़ाम और फुकाह इज़ाम के लिए कि जो हुकूमत के लायक है, जिनके जिनमें हुकूमत है, जो वली फकीह है, उनके लिए कुरान की रोशनी में चंद शराइत का होना लाजिम और जरूरी है। पहली चीज तक्वा और ईमान, दूसरी चीज इल्म, शुजाअत और कुदरत। यहाँ तक कि हमारी बहस कि हमने कहा कि हमारी जो बहस थी विलायत फजल कुरान की रोशनी में यहाँ पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह कल से हमारी बहस का आगाज होगा विलायत फकी यानी वली फकी सुन्नत यानी अहादीस मासूमीन की रोशनी में कि मासूमीन ने वली फकी के सिलसिले में अपनी अहादीस में क्या बयान फरमाया है। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।